लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि निकट पूर्व में वार्ता, साक्षात्कार और पुनर्मिलन की भावना उभरे, जहां विविध धार्मिक समुदाय एक साथ मिलकर जीवन यापन करते हैं। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। पवित्र धर्मग्रंथ बाइबल एक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल के प्राचीन व्यवस्थान के स्तोत्र ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं। स्तोत्र ग्रंथ 150 भजनों का संग्रह है। इन भजनों में विभिन्न ऐतिहासिक और धार्मिक विषयों को प्रस्तुत किया गया है। कुछ भजन प्राचीन इसराइलियों के इतिहास का वर्णन करते तो कुछ में ईश कीर्तन, सृष्टिकर्ता ईश्वर के प्रति धन्यवाद ज्ञापन और पापों के लिए क्षमा की याचना के गीत निहित हैं। कुछ ऐसे भी भजन हैं जिनमें प्रभु की कृपा, उनके अनुग्रह और अनुकंपा की याचना की गई है। इन भजनों में मानव की दीनता और दयनीय दशा का स्मरण कर करुणावान ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि वे कठिनाइयों को सहन करने का साहस दें और सभी बाधाओं को जीवन से दूर रखें। मैंने सत्य का मार्ग चुना और तेरे निर्णयों को हृदयंगम किया है। मैं तेरे आदेशों का पालन करता हूँ। प्रभु, तू मुझे निराश मत होने दे। मैं तेरी आज्ञाओं के मार्ग पर चलता हूँ, क्योंकि तू मुझमें नव जीवन का संचार करता है। श्रोताओं, ये थे स्तोत्र ग्रंथ के 119वें भजन के 30वें, 31वें और 32वें पदों के शब्द। इन्हीं पदों की व्याख्या से विगत सप्ताह हमने पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम समाप्त किया था। इस तथ्य पर हमने गौर किया था कि भजनकार कई बार प्रभु के मार्ग वाक्यांश का उपयोग करता है। इस वाक्यांश द्वारा वह दर्शाना चाहता है कि ईश आज्ञाओं का पालन करते हुए प्रभु के मार्ग पर आगे बढ़ने वाला ही सुख, समृद्धि और सफलता प्राप्त करता है। उसका परामर्श है कि मनुष्य प्रभु के मार्ग पर नित्य आगे बढ़ता रहे, शिक्षा ग्रहण करे तथा ईश नियमों पर चलकर समझदारी में विकसित होता रहे, क्योंकि गतिशील होना ही जीवन है। श्रोताओं, जैसा कि हम कह चुके हैं, बाइबल के अर्थों में जीवन एक स्थिर अनुभव नहीं है, अपितु एक खास लक्ष्य की ओर नित्य आगे बढ़ते रहने वाला संघर्ष है, जिसके बाद मनुष्य गहन संतोष का अनुभव प्राप्त करता है। प्रभु ईश्वर की सत्य प्रतिज्ञता के कारण वह जीवन का हर संघर्ष पार कर लेता है। इसी पृष्ठभूमि में प्रभु ईश्वर ने नबी मूसा के माध्यम से मनुष्य जाति पर अपने 10 नियमों को प्रकट किया था, जिनके अनुपालन का अर्थ केवल ईश्वर से प्यार नहीं है, बल्कि अपने भाई और पड़ोसी से भी प्रेम है। विशेष रूप से दुर्बल, कमजोर, बेरोजगार, बेघर और जरूरतमंद भाइयों और बहनों से प्रेम। प्रेम का अर्थ है उनकी मदद को सदैव तत्पर। इस प्रकार श्रोताओं, 119वें भजन के उक्त शब्दों में इस विचार को अभिव्यक्ति मिली है कि नियम का पालन करना, विधान और कानून को बनाए रखना वस्तुतः जीवन है, और ईश्वर ने यही चाहा है कि मनुष्य जीवन जिए, वह बहुतायत का जीवन प्राप्त करें।
प्रभु जीवन के रास्ते पे ले चल, हे प्रभु पाप से भरा हूँ मैं मुझे बदल, हे प्रभु जीवन के रास्ते पे ले चल, हे प्रभु पाप से भरा हूँ मैं मुझे बदल।
आगे 119वें भजन के 33 से लेकर 40 तक के पदों में भजनकार कहता है, प्रभु मुझे अपने विधान के मार्ग की शिक्षा प्रदान कर, मैं जीवन भर उस पर चलता रहूंगा। मुझे ऐसी शिक्षा दे जिससे मैं सारे हृदय से तेरी संहिता का पालन करता रहूं। मुझे अपनी आज्ञाओं के मार्ग पर ले चल, क्योंकि वे मुझे आनंद प्रदान करती हैं। मेरे हृदय में धन संपत्ति का नहीं बल्कि अपने आदेशों का अनुराग रोपने की कृपा कर। संसार की माया से मेरी दृष्टि हटा दे, मुझे अपने मार्ग द्वारा नव जीवन प्रदान कर। अपने सेवक के लिए अपनी प्रतिज्ञा पूरा कर और लोग तुझ पर श्रद्धा रखेंगे। मुझसे अपमान दूर कर, मैं उससे डरता हूँ, क्योंकि तेरे निर्णय कल्याणकारी हैं। मुझे तेरी आज्ञाएं हृदय से प्रिय हैं। तू अपने न्याय के अनुरूप मुझे नव जीवन प्रदान कर। इन शब्दों से स्पष्ट है कि भजनकार ईश्वर के मार्ग के बारे में सचेत हो उठा था। उसमें यह चेतना जागृत हो चुकी थी कि ईश नियमों पर चल कर ही वह अपने जीवन को साकार कर सकता था। इसलिए कि ईश्वर के नियम केवल पत्थर पर खुदे शब्द मात्र नहीं है, बल्कि प्रभु के नियम जीवंत शब्द है। प्राचीन व्यवस्थान के पहले ग्रंथ में यानी कि उत्पत्ति ग्रंथ में ही हम प्रभु ईश्वर के मुख से अब्राहम से कहे शब्दों को सुनते हैं, जिसमें प्रभु कहते हैं, अब्राहम मत डरो, मैं तुम्हारी ढाल हूँ, तुम्हारा पुरस्कार महान होगा। श्रोताओ, 119वें भजन के उक्त शब्दों में कई बार प्रार्थी ईश्वर से उनके आदेशों पर चलने की कृपा मांगता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार येसु के शिष्य थॉमस अपने गुरु और प्रभु येसु ख्रीस्त से बारंबार प्रश्न करते हैं, कहते हैं, प्रभु हम नहीं जानते कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो हम किस प्रकार मार्ग को ढूंढ सकते हैं। अस्तु, भजनकार का कहना स्पष्ट है कि ईश नियमों पर चलने से पहले उन्हें जान लेना, उन पर अध्ययन करना और उन पर मनन चिंतन करना नितांत आवश्यक है। संत अनसेल्मो ने विश्वास और प्रज्ञा के बीच संबंध को परिभाषित करते हुए कहा था, ऐसा प्रतीत होता है कि मुझे पहले विश्वास करना होगा, तभी मुझमें समझदारी उत्पन्न होगी। श्रोताओ, हम अर्थशास्त्र पढ़ते हैं, सामाजिक विज्ञान सामाजिक शास्त्र पढ़ते हैं, मानव शास्त्र पढ़ते हैं, राजनीति विज्ञान को पढ़ते हैं, किंतु उन्हें पूरी तरह से समझ लेने के बाद ही इन विज्ञानों का आनंद हम प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार ईश नियमों को जान लेने के बाद ही, उन पर अध्ययन कर लेने के बाद ही और उन पर मनन चिंतन करने के बाद ही हम उन पर चल सकेंगे और उनका आनंद उठा पाएंगे। भजनकार कहता है, मुझे अपनी आज्ञाओं के मार्ग पर ले चल, क्योंकि वे मुझे आनंद प्रदान करती हैं। ठीक इसके विपरीत स्वार्थ पूर्ति के लिए काम करना है, केवल अपने बारे में सोचना, अन्यों की परवाह न करना। वस्तुतः यह व्यवहार व्यक्ति में खोखलापन और खालीपन उत्पन्न कर देता है तथा उसे तृप्त करने के बजाय उसमें बेचैनी और तनाव उत्पन्न कर देता है। इसीलिए भजनकार भजन के 36वें और 37वें पदों में कहता है, मेरे हृदय में धन संपत्ति का नहीं बल्कि अपने आदेशों का अनुराग रोपने की कृपा कर। संसार की माया से मेरी दृष्टि हटा, मुझे अपने मार्ग द्वारा नव जीवन प्रदान कर। श्रोताओ, जीवन की तीर्थ यात्रा वास्तव में प्रभु ईश्वर की उपस्थिति पर निर्भर रहा करती है। हालांकि इस सच को हृदयंगम करना हमारे लिए सहज नहीं होता, तथापि यह सच है कि ईश्वर की कृपा के बिना हम कुछ भी नहीं है। ईश्वर की कृपा, उनके अनुग्रह और उनकी आशीष के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। हमारा संपूर्ण अस्तित्व ईश्वर पर ही टिका है, इसलिए हम ईश्वर के आदेशों पर ध्यान दें और उन्हीं पर अमल करें, जैसा कि फिलिप्पियों को प्रेषित पत्र में संत पॉल लिखते हैं। भाइयों, जो कुछ सच है, आदरणीय है, जो कुछ न्याय संगत है, निर्दोष है, जो कुछ प्रीतिकर है, मनोहर है, जो कुछ उत्तम है, प्रशंसनीय है, ऐसी बातों का मनन किया करें।
हे प्रभु, जीवन के रास्ते पे ले चल, हे प्रभु, पाप से बराबर मैं मुझे बदल।
आज मेरा ध्यान खोया, आज द्वार तेरे आ गया हूँ मैं, द्वार तेरे आके देखा, प्यार क्या है, सत्य क्या पा गया हूँ मैं, तू ही मेरा मीत है, तू ही मेरी प्रीत है।
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं, लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने 14 नवंबर के ट्वीट संदेश में कहा, ईश्वर ने हमें महान वरदान प्रदान किए हैं। वे वरदान हैं हमारा जीवन, दूसरों का जीवन एवं प्रत्येक को मिली क्षमताएं, और वे हमें बुलाते हैं कि हम इन क्षमताओं द्वारा साहस एवं रचनात्मक रूप से फल लाएं। संत पापा फ्रांसिस ने बृहस्पतिवार 14 नवंबर को वैटिकन के क्लेमेंटीन सभागार में डिजिटल जगत में बाल प्रतिष्ठा पर कांग्रेस के प्रतिभागियों से मुलाकात की तथा उन्हें अपना संदेश दिया। संत पापा ने पिछली मुलाकात में दिए संदेश को याद किया, जिसमें उन्होंने प्रतिभागियों से आग्रह किया था कि डिजिटल जगत में बाल प्रतिष्ठा की रक्षा अधिक प्रभावशाली ढंग से किया जाए। उन्होंने खुशी व्यक्त की कि इस रास्ते को नए प्रयासों के साथ जारी रखा गया है, जिसमें खासकर एक साल पहले अबूधाबी में अंतर धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। उन्होंने कहा, हाल के दशकों में दुखद और त्रासदीपूर्ण अनुभवों के कारण कार्तिकली से नाबालिगों पर यौन दुराचार के नए प्रभाव से पूरी तरह सचेत है। इसके कारण पीड़ा और घावों से चंगाई की आवश्यकता, अपराध से संघर्ष तथा इसे दूर करने के प्रभावशाली उपायों को अपनाए जाने की आवश्यकता महसूस की गई है। इस कारण से कलीसिया इन मुद्दों पर दीर्घकालीन दृष्टि से संपर्क करना अपना कर्तव्य समझती है। उन्होंने कहा, जब हम उन गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं जो संचार और सूचना तकनीकी के आश्चर्यजनक विकास के कारण मानव परिवार के भविष्य के लिए खतरनाक है, निसंदेह डिजिटल जगत में नई तकनीकी में विकास ने नाबालिगों के लिए उनकी शिक्षा एवं व्यक्तिगत विकास के लिए महान अवसर प्रदान किया है। यह ज्ञान को विस्तार रूप से बांटने में मदद करता है, आर्थिक विकास को बढ़ावा देता और स्वास्थ्य सेवा के साथ साथ कई अन्य क्षेत्रों में कई संभावनाएं उपलब्ध की हैं। नई तकनीकियां नए क्षितिज को खोलते हैं, खासकर गरीब और औद्योगिक क्षेत्र में रहने वाले बच्चों के लिए। हमारे सामने चुनौतियां हैं कि हम बच्चों को उन तकनीकियों की सुरक्षित सुविधा उपलब्ध कराएं, साथ ही साथ उनके स्वास्थ्य, सतत विकास और अस्वीकार्य आपराधिक हिंसा से रक्षा करें, अर्थात उनके शरीर और आत्मा की पवित्रता को हानि से बचाएं। संत पापा ने प्रतिभागियों से कहा कि हमें हिंसा और बच्चों पर हो रहे हर प्रकार के शोषण को पृथ्वी तल से मिटाना होगा। आइए हम बच्चों की आंखों में नजर डालें, वे हमारे बच्चे हैं, हमें उन्हें ईश्वर की संतान की तरह प्यार करना है, उन्हें भी एक अच्छे जीवन का अधिकार है और हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हें इसे प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास करें। इस बीच संत पापा फ्रांसिस ने जेसुइट फादर जॉन अंतोनियो गुएरेरो को अर्थव्यवस्था के लिए वैटिकन सचिवालय का अध्यक्ष नियुक्त किया, जो जनवरी 2020 से अपना कार्यभार संभालेंगे। 60 वर्षीय जेसुइट फादर अंतोनियो अंतर्राष्ट्रीय रोमी घरों और कार्यों के लिए फादर जनरल के प्रतिनिधि हैं। वे जेसुइट फादर जनरल के सलाहकार भी हैं। फादर गुएरेरो ने कहा, एक जेसुइट के रूप में सीधे संत पापा से मिशन प्राप्त करना मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है या मेरी बुलाहट को महसूस करने का सौभाग्यपूर्ण तरीका है। मैंने आज्ञा पालन का जो व्रत लिया है उसने मुझे हमेशा अनपेक्षित रास्तों पर लिया है और उन स्थानों पर पहुंचाया है जहां मैं पहुंचने का साहस नहीं किया होता, इसलिए मैं आभारी हूँ। आज्ञा पालन मेरे लिए प्रभु से मुलाकात करने का एक सौभाग्यपूर्ण स्थल है। फादर गुरेरो का जन्म स्पेन के मेरिदा में सन 1959 में हुआ था। 20 साल की उम्र में उन्होंने यीशु समाज में प्रवेश किया। उन्होंने स्पेन, ब्राजील, फ्रांस एवं अमेरिका में अध्ययन किया तथा अर्थव्यवस्था में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। 1994 से 2003 तक वे सामाजिक और राजनीतिक दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर रहे। स्पेन में नोविस मास्टर रहते हुए उन्होंने डॉक्टरेट की पढ़ाई पूरी की। 2008 में वे स्पेन में प्रोविंशियल चुने गए। 6 साल बाद 2014 में वे मोजम्बिक भेजे गए। उसके बाद 2017 में रोम बुलाए गए जहां उन्हें फादर जनरल के सलाहकार एवं रोमी घरों और कार्यों के लिए फादर जनरल का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। फादर गुरेरो इताली, अंग्रेजी, फ्रेंच, पुर्तगाली और स्पानी भाषाओं के कुशल ज्ञाता हैं। संत पापा फ्रांसिस ने बुधवार 13 नवंबर को कैंटरबरी के एंग्लिकन महाधर्म अध्यक्ष जस्टिन वेल्बे तथा रोम स्थित एंग्लिकन केंद्र के नवनियुक्त निदेशक महाधर्म अध्यक्ष इयान एर्नेस्ट से वैटिकन में मुलाकात की। महाधर्म अध्यक्ष एर्नेस्ट जो मॉरिशस के धर्म अध्यक्ष तथा इंडियन ओशन की एंग्लिकन कलीसिया के पूर्व धर्म अध्यक्ष रह चुके हैं, कैंटरबरी के लिए वैटिकन के व्यक्तिगत प्रतिनिधि भी नियुक्त हुए हैं। 13 नवंबर को संत पापा के साथ उनकी इस सौहार्दपूर्ण मुलाकात में विश्व भर के ख्रिस्तियों की स्थिति पर चर्चा की गई और अंतर्राष्ट्रीय संकटपूर्ण स्थितियों पर गौर किया गया, खासकर दक्षिण सूडान की दुखद स्थिति पर। मुलाकात के अंत में संत पापा फ्रांसिस एवं कैंटरबरी के महाधर्म अध्यक्ष ने सहमति जताई कि यदि देश की राजनीतिक स्थिति अवसर देगी तो राष्ट्रीय एकता की एक माध्यमिक सरकार के गठन पर आगामी 100 दिनों में युगांडा के एंटेबे में हस्ताक्षरित समझौते के अनुसार एक साथ दक्षिण सूडान की यात्रा करेंगे। एशियाई कैथोलिक धर्मदर्श सम्मेलनों के संघ के अध्यक्ष कार्डिनल चार्ल्स बो ने एशिया में संत पापा फ्रांसिस की आगामी प्रेरित यात्रा पर एक संदेश जारी किया है। कार्डिनल बो ने थाईलैंड एवं जापान में संत पापा फ्रांसिस की आगामी प्रेरित यात्रा को ख्रिस्तियों के लिए कृपा का समय कहा है। यंगोन के महाधर्मदर्श म्यांमार के कार्डिनल चार्ल्स बो ने कहा है कि संत पापा फ्रांसिस आधुनिक समय के नबी हैं। वे एक विश्व नेता हैं जो न केवल धार्मिक संदेश की घोषणा करते बल्कि मानवता का संदेश भी देते हैं। संत पापा 20 से 26 नवंबर तक थाईलैंड और जापान की प्रेरित यात्रा करेंगे। यह यात्रा विदेश में उनकी 32वीं और एशिया में 4थी प्रेरित यात्रा होगी। इसके पूर्व उन्होंने 2014 में दक्षिण कोरिया, 2015 में श्रीलंका और फिलीपींस तथा 2017 में म्यांमार और बांग्लादेश की यात्रा की थी। सलेशन कार्डिनल ने म्यांमार और बांग्लादेश में संत पापा की यात्रा को कृपा एवं चमत्कार का अवसर कहा था। यात्रा कठिन थी किंतु यह इन देशों में संत पापा की यात्रा को नहीं रोक सकी। वे गौर करते हैं कि वे वहां शांति के तीर्थयात्री के रूप में आए तथा उनकी उपस्थिति लोगों के हृदयों में अपार आनंद और खुशी लाई। उन्होंने कहा, जब संत पापा हमारे पास आए तो पूरा म्यांमार आशा से भर गया। उन्होंने कैथोलिक कलीसिया को प्रोत्साहन दिया तथा युवाओं को शांति का माध्यम बनने हेतु प्रेरित किया। थाईलैंड एवं जापान में भी संत पापा की यात्रा पर कार्डिनल बो की उम्मीद है कि यह एक महान आशीर्वाद साबित होगा। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।